सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को रेखांकित किया। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन जी। अदिति जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
धन्यवाद सुबोध जी।
अदिति जी, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन महिला सशक्तिकरण के व्यापक अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव कहा जा सकता है, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगी?
देखिए, आज का ये जो सम्मेलन है, ये एक तरीके से भाजपा सरकार का उद्घोष है कि आने वाले जो सत्र में 16 से 18 अप्रैल को जो बजट सत्र रिकन्वीन होगा, बजट सत्र एडजर्न हुआ था लेकिन प्रोरोग नहीं हुआ था, तो वो रिकन्वीन हो सकता है। रिकन्वीन जब होगा तो एक महत्वपूर्ण एजेंडा सरकार लेके आएगी। ये एजेंडा जो है, हम सब जानते हैं कि 33% महिला आरक्षण लोकसभा और राज्य की असेंबलीज में लाने का एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को लेके सरकार पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज्ड है, बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं छोटी और बड़ी पार्टीज दोनों से, और उसी के एक अंक में आज प्रधानमंत्री का ये जो रिमार्क था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। बिकॉज प्रधानमंत्री ने ये कहा है अपने रिमार्क्स में कि 21वीं सदी के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों में से जो 16 से 18 अप्रैल को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करने जा रही है, वो एक महिला आरक्षण को लेकर जो संशोधन लाने जा रही है, जिससे क्या मुमकिन होगा कि 2029 के चुनावों में, आम चुनावों में, यह आरक्षण पॉसिबल हो पाएगा, जो पहले ऐसा अंदेशा था कि 2034 तक जा सकता है। 2023 का जो कानून पारित हुआ था उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से ये डिले हो सकता है। उस डिले को खत्म करने के लिए सरकार कुछ संशोधन लाना चाहती है, जिसका आज उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया।
आपने जिस संशोधन की बात की है, तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित संशोधन पे क्या कहा है।
भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा।
अदिति जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी, दो बातें इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय लगती है। एक तो समतामूलक समाज की परिकल्पना की बात है और एक नया इतिहास रचने की बात है। क्या आप आज की नीतियों के संदर्भ में हमारे श्रोताओं को इस पर कुछ समझाना चाहेंगी?
देखिए, ये जो महिला आरक्षण का एजेंडा है, ये नया नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि ये 1996 में पहली बार इसका पहला मसौदा पेश किया गया था। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब एक ड्राफ्ट आया था, तब ये जो चर्चा है शुरू हुई थी। एक ज्वाइंट सिलेक्ट कमिटी बनी थी पार्लियामेंट की, जिसकी चेयरपर्सन गीता मुखर्जी को बनाया गया था, वो सीपीआई की एक वरिष्ठ नेता थी। पहली बार उन्होंने, उस कमिटी ने एक बिल पेश किया था पार्लियामेंट में। उस बिल का जो मसौदा है सुबोध जी, हर सरकार डिस्कस करती रही। उसके बाद 96 में इसकी चर्चा हुई, 97 में हुई, 98 में हुई। कांग्रेस लेड यूपीए सरकार ने 2008 में कोशिश की कि ये बिल अपने करंट स्ट्रक्चर में पारित हो, पर हम सब जानते हैं कि बहुत सी ऐसी पार्टीज थी जिनको इस बिल के प्रारूप से कुछ प्रॉब्लम्स थी। अगर मैं उल्लेख करना चाहूं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी जनता दल यूनाइटेड के, जो उस वक्त के नेता शरद यादव जी थे। उन्होंने ये कहा था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाएं। तो अब जो 2023 में कानून पारित हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो हर तरीके से पूर्ण कानून है, जिसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि एक तिहाई आरक्षण हो जाए महिलाओं के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, और ये भी ध्यान रखा गया है कि उस कोटा के अंतर्गत जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की महिलाएं हैं, उनको भी एम्पावर किया जाए। तो एक तरीके से पॉलिटिकल कंसेंसस आप मानिए कि 30 साल बाद, 3 दशक की ये यात्रा अब पूरी होने जा रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा आइडिया है जिसका अब समय आ गया है।
अगर हम देखें तो ये सचमुच नया इतिहास रचने की तो बात ही है, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 21वीं सदी के सबसे अहम निर्णयों में से एक बताया जा रहा है। क्या महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में इसकी बहुत अहम भूमिका हो सकती है?
जी सुबोध जी, सबसे महत्वपूर्ण इस बिल की यही भूमिका होने जा रही है। इनफैक्ट आम चर्चा में महिलाओं से अगर आप पूछें तो वो हैरान भी होती हैं कि एक ऐसा देश जहां पर पहली महिला प्रधानमंत्री 1966 में ही हो गई थी, उसके बाद पंचायती राज में आरक्षण बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन देखिए लोकसभा में आरक्षण आते आते कितना वक्त लगा। और महिलाओं का ये प्रश्न भी पॉलिटिकल क्लास से जायज है कि इतना वक्त क्यों लगा, और अब अगर वक्त आ गया है तो इस वक्त को सीज किया जाए, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी को सीज किया जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक कंसेंसस बना के इस अहम राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर आगे बढ़े। देखिए महिलाओं के आरक्षण से क्या होने वाला है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बहुत सी नीतियां ऑलरेडी सरकार चला रही है। हम देख रहे हैं कि महिलाओं को मुद्रा योजना में लोन्स मिल रहे हैं, महिलाएं स्टेम डिसिप्लिन में बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। अगर आप इंडियन विमेन की बात करें तो स्टेम डिसिप्लिन्स में जितने लोग जाते हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ वगैरह में, उसमें 42% महिलाएं जाती हैं भारत में। ये सबसे ज्यादा संख्या है, प्रोपोर्शन है पूरे विश्व में। तो स्पेस में भी महिलाएं पहुंच गई हैं, अब आर्म्ड फोर्सेज में कॉम्बैट रोल्स में महिलाएं हैं, तो फिर पॉलिटिकल क्लास में क्यों नहीं? और पॉलिटिकल क्लास में आरक्षण का महत्व क्या है? आरक्षण का महत्व ये है कि बहुत आसान नहीं होता किसी महिला के लिए पहले तो पार्टी की टिकट पाना, उसके बाद अगर आप टिकट पा गए तो इलेक्शन लड़ना। तो एक सुचारू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि आप एक एनेबलिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जैसा कि आप समाज में नीतियों के अंतर्गत करते हैं, वही चीज आप एफर्मेटिव एक्शन के थ्रू पार्लियामेंट में करेंगे। जब एक मौका महिलाओं को देंगे तो वो लीडरशिप रोल्स में आएंगी, उससे क्या होगा कि गवर्नेंस सेंसिटिव होगी। जब महिलाओं का अपना पर्सपेक्टिव लॉ मेकिंग का हिस्सा बनेगा, विधायी प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा, तो ये जग जाहिर है, बहुत सी इस पे साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं, इकोनॉमिक विश्लेषण हो चुके हैं कि जहां जहां महिलाओं को आपने राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने राष्ट्रों का स्वरूप बदल दिया है। रुआंडा का एग्जाम्पल हम सबके सामने है, 1990s के जीनोसाइड के बाद रुआंडा ने 60% महिला आरक्षण किया और आज आप देखिए वो देश बिल्कुल बदल गया है।
जी, और 16 अप्रैल से होने वाली चर्चा पर भी प्रधानमंत्री ने कहा है,
2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे, मंथन करते रहे, नए नए रास्ते खोजते रहे। संविधान की जिनको ज्यादा अध्ययन है ऐसे लोगों की भी सलाह ली और 16 अप्रैल से संसद में इस पर व्यापक चर्चा भी होने जा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है, इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी।
अदिति जी, क्या महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, अब इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम तो लाया जाएगा, जो संशोधन लाया जा रहा है, क्या उससे हम माने कि शासन में संवेदनशीलता और प्रभावशीलता दोनों बढ़ेगी?
बिल्कुल सुबोध जी, ये
जैसे आपने रवांडा का उदाहरण दिया था, थोड़ा और हम इस पर विस्तार से बात करें।
मैं आपको पीछे ले चलती हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण का जो एविडेंस बेस्ड जितना भी हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है सुबोध जी, वो हमें हमेशा यही बताता है कि जब जब महिलाओं के हाथ में पैसा दिया गया है, जब जब महिलाओं के हाथ में अपॉर्चुनिटी दी गई है, उन्होंने बढ़ चढ़कर और मल्टीफोल्ड जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिया है सोसाइटी को। मैंने रुआंडा का जिक्र किया, वो एक एग्जाम्पल है, आप अपने ही देश की एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें 15 महिलाएं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा इसीलिए बनाई गई थी कि महिलाओं का हमारी देश की ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आए और फिर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट हो। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन महिलाओं ने, जिसमें सरोजनी नायडू थी, हंसा मेहता थी, राजकुमारी अमृत कौर थी और ऐसी बहुत सी महिलाएं थी, 15 नंबर था टोटल उन महिलाओं का, जैसे कुछ महिलाएं फंडामेंटल राइट्स पे जो डिबेट चल रही थी उसकी सब कमेटी की मेंबर्स थी, अगर आप उनके विचार देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कितने प्रोग्रेसिव महिलाएं थी, अपने टाइम से बढ़कर उनकी सोच थी और महिला प्रेजेंस होने से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये तय हो गया था कि इंडिया में महिलाओं को एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिपेंडेंस के साथ साथ ही दे दी गई थी। कितने सारे विश्व देश
बहुत बड़ी बात है,
जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहते रहे सुबोध जी, उनको तो अरसे लग गए ये करने में। और छोटी सी बात आपको बताऊंगी कि भारत के मूल में ही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का सोल क्या है, आत्मा क्या है, इक्वालिटी। तो आप महिलाओं को जो 33% अब आरक्षण देने जा रहे हैं वो एक्चुअली बहुत लेट है, वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये डिबेट जो आप और हम आज कर रहे हैं ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन भारत में मैंने जैसा कहा कि प्राचीन काल से, आदि काल से हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यू है इक्वालिटी, तो हम कोई नई चीज नहीं करने जा रहे। हमारे उपनिषदों में गार्गी का जिक्र है, कैसे उन्होंने जनक जी के कोर्ट में जो इतने बड़े बड़े महारथी थे उनके साथ विचार विमर्श किया, अपनी बात कही, हर चीज पर, नेचर पर, फिलोसफी पर, अपना जो भी उनके मन में था वो रखा। तो महिला कि जो भूमिका है भारतीय सिविलाइजेशन में वो हमेशा से सशक्त है। हम तो इनफैक्ट लेट हैं, और अब हम कर ही दें तो अच्छा होगा।
आइए हम आते हैं वित्तीय समावेशन पर। महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी भूमिका वित्तीय समावेशन की भी है, और हमने देखा पिछले दिनों जब जनधन योजना के तहत बड़ी संख्या में बैंक खाते खुल रहे थे महिलाओं के खाते, उसमें काफी ज्यादा उनके भी बैंक अकाउंट्स खुले हैं। इसके अलावा मुद्रा योजना और स्टार्टअप्स में महिलाओं की जो सक्रियता है, तो ये एक वित्तीय समावेशन की ओर अग्रसर होती हुई दिख रही है हमें महिलाएं।
बिल्कुल, बहुत सी ऐसी स्कीम्स सरकार की हैं जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत सुदृढ़ हुआ है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि मुद्रा योजना को ही अगर आप विश्लेषण उसका कर लीजिए तो 60% जो लोन गए हैं वो महिलाओं को गए हैं। उसके बाद आप सुकन्या समृद्धि योजना ले लीजिए, उसमें ये प्रावधान है कि 8.2% इंटरेस्ट रेट पर आप अगर गर्ल चाइल्ड आपके घर होता है तो आप पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने भी इस स्कीम का जिक्र किया कि जैसे ही महिला सांस लेती है उसके जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक स्कीम्स मौजूद हैं। तो इन स्कीम्स का यही मकसद है कि महिलाएं अपने पोटेंशियल को अच्छे तरीके से पा सकें। और मुझे लगता है सुबोध जी, जो सबसे रेवोल्यूशनरी चेंज आया है पिछले कुछ सालों में वो ये है कि हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की संख्या इतनी बढ़ गई है। महिला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है किसी भी समाज में कि उनको संगठित करने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि उनकी आवाज संगठित नहीं होती, इसलिए उनको अपनी बात कहने में भी वक्त लगता है क्योंकि लोग उनको बहुत सीरियसली उस वक्त तक लेते नहीं है। लेकिन ये जो स्वयंसेवी समूहों का एक पूरा रेवोल्यूशन हमारे देश में चल रहा है, अमूल और कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी तो बहुत पुरानी एक एग्जाम्पल है, तब हर सेगमेंट में आप पाएंगे कि विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत कमाल की काम कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम
जी,
आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, वो ड्रोन्स के इस्तेमाल से खेतों का देखभाल कर रही हैं, और बहुत कुछ और भी हो रहा है।
भारत में महिला पायलटों की बढ़ती हुई संख्या, ये भी उल्लेखनीय है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी, बल्कि आज प्रधानमंत्री ने इसका भी उल्लेख किया था। अब कहा था कि देखिए, भारत जैसी जगह जहां आप एक्चुअली सोचेंगे नहीं कि शायद महिलाएं सबसे ज्यादा महिला पायलट इंडिया में है। ये डेटा सबसे पहले लास्ट ईयर पार्लियामेंट में पेश हुआ था, इस पे बहुत खबरें बनी थी, हेडलाइन बनी थी, और जाहिर सी बात कि बनेंगी। ना सिर्फ ये, आपको ये भी याद होगा सुबोध जी कि हमारे देश में जब पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नेशनल रिस्पांस दिया था टेरर अटैक को, उसके बाद सरकार ने दो महिलाओं को यह जिम्मेदारी दी थी कि आके पूरे विश्व के सामने देश की बात रखें। वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिंबल था कि सरकार महिलाओं को कितना ट्रस्ट करती है। और अगर आप देखें जो लाल किले से बहुत से भाषण हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उसके भी विश्लेषण में आप ये पाएंगे कि सरकार ने अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण के कैंपेन के पीछे पूरी तरह से लगाई है। आज भी अपने रिमार्क्स में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सेफ्टी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो सेफ स्पेसेस हैं सुबोध जी, वो सिर्फ सरकारों का या पुलिस का काम नहीं है, वो सोसाइटी का एक साझा काम है। जब तक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं बनेगी, आप महिलाओं को नेचुरली सम्मान नहीं देंगे और महिलाओं को कमोडिफाई करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें सुधर नहीं सकती हैं।
अदिति जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में